మాయావాదమ్మ సత్శాస్త్రం
బౌద్ధం ప్రచన్నముచ్యతే
తస్మాత్ కల్పితం దేవి
కలో బ్రాహ్మణ రూపిణ మాయవాదమ్మ సచ్ఛాస్త్రం
బౌద్ధం ప్రచన్నముచ్యతే
తస్మాత్ కల్పితం దేవి కలో బ్రాహ్మణ రూపిణ
యాద్
హో గయా సబ్కో కిస్ కిస్ కో యాద్ హో గయా చార్ దామోదర్ దేవ్ ప్రభు कि है भगवान कृष्ण की आज्ञा के अनुसार मैं कलो ब्राह्मण रूपिणा कलयुग में ब्राह्मण का रूप धारण करके जाऊंगा। तो हाँ, आर्यम्बा और शिव गुरु उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए। तो शिवजी स्वयं उनके स्वप्न में आए और उन्होंने कहा कि मैं आपके गोद में जन्म लूंगा, आपके गर्भ से जन्म लूंगा और 32 साल जीऊंगा। 32 ईयर्स शंकराचार्य कितना, 32 साल मात्र जिए। तो कम बच्चे तो नहीं, कम से कम बच्चा तो आए, तो वो लोग बहुत खुश हो गए। आप तो जैसे बच्चे का जन्म हुआ उनका नाम शंकरा रखे। शंकरा रखने के बाद बचपन में उनको बहुत सारे शक्तियां थी, उनका साक्षात शंकर है, शंकरा हिमसेल्फ। तो कलो ब्राह्मण रूपेण इस प्रकार प्रकट हुए। आपने देखा होगा इधर शिखा जो है थोड़ा सा ऐसा है, ये नंबूदरी ब्राह्मण कहा जाता है, केरल में नंबूदरी ब्राह्मण है। जैसे अलग अलग जगह के अलग अलग ब्राह्मण होते हैं, जैसे ये जगह के जो ब्राह्मण है उनको शिवल्ली ब्राह्मण कहा जाता है, शिवल्ली ब्राह्मण। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के अलग अलग ब्राह्मण है। दक्षिण भारत के जो साउथ केरल के जो ब्राह्मण है उनको क्या कहा जाता है, नंबूदरी ब्राह्मण। ये नंबूदरी ब्राह्मण का शिखा ऐसा रहता है,
सामवेदी का जो अनुयायी है उनका शिखा,
हाँ, यानी लेफ्ट साइड की ओर उनका ये रहता है, कुछ लोगों का आगे की ओर रहता है, इसको दक्षिण शिखा कहा जाता है। ऐसे ही ये हमारा ये जो है, ये कुछ ब्राह्मण लोग इसको इस प्रकार का शिखा रखते है। हमने इस प्रकार का शिखा हमने स्वीकार किया, वी एक्सेप्टेड दिस काइंड ऑफ शिखा। ये नॉर्मल है, इसका कोई नाम नहीं मालूम, इसको दक्षिण शिखा कहा जाता है। ये तो वैदिक है, वैदिक प्रकार अलग प्रकार की शिखा है। गौड़ीय वैष्णव शिखा करके कुछ होता नहीं है, वी एक्सेप्टेड वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ शिखा। तो श्रीपाद शंकराचार्य के जीवनी के बारे में 150 जीवनी उपलब्ध है और एक दूसरे से अनेकों विरुद्ध है। खास करके उनका सन्यास लेने के बाद का जीवनी, क्योंकि कंफ्यूजन क्या है, प्रत्येक शंकराचार्य अपने आप को शंकराचार्य कहते हैं, अभी किसका क्या है नहीं मालूम पड़ता है, लेकिन सब लोगों का ये मानना है कि शंकराचार्य का जन्म हुआ कलड़ी में, ये बात निश्चित रूप में मानना है। बाकी सब जितने भी दिखाई पड़ रहा है ये क्या है कौन किया वो नहीं मालूम, नोबडी नोस।
कौन किया?
क्योंकि जितने भी सब शंकराचार्य है,
शंकराचार्य
और उनका जन्म के बारे में भी कौन से तारीख को हुआ, कौन से साल में हुआ, वो भी नहीं, किसी को नहीं मालूम। अधिकांश लोगों का कहना है 11वीं सदी में हुआ, लेकिन वैष्णव का मानना नहीं, 7वीं सदी में ही हैपेंड। और कुछ लोगों का मानना है नहीं, वो बहुत पहले हुआ, 2000 साल पहले हुआ। तो अलग अनेकों अनेकों प्रकार के मत है, इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन है, लॉट ऑफ कंफ्यूजन।
अगर उन्होंने अगर बुद्धिज्म को अगर उन्होंने खंडन किया था, क्योंकि बुद्धिज्म जो है 600 BC में हुआ था, तो 600 BC
उसके बाद भी हुआ,
तो उसके बाद शंकराचार्य
बाद ही हुआ, दैट इज ट्रू।
माध्वाचार्य 8th सेंचुरी में आए थे।
हाँ, उनके 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 पहले आए। तो श्री वैष्णव और मध्य वैष्णव स्कॉलर्स के अनुसार दे आर नॉट वन शंकर, देयर टू शंकर, एक शंकर नहीं, दो शंकर। ये एक है आदिशंकर, दूसरा है धूर्त रास्कल शंकर, जो शिवजी का अवतार के रूप में प्रकट हुए हैं। तो उन्होंने निश्चित रूप से मायावाद भाष्य की रचना किया, लेकिन इसके बाद और एक शंकर हुए जो मणिमान नामक राक्षस का अवतार है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। तो इसके विषय में बहुत सारे कन्फ्यूजन है, लेकिन हम इस कन्फ्यूजन में नहीं जाएंगे, सार रूप में करेंगे। श्रीपाद शंकराचार्य, प्रभुपाद जी को एक व्यक्ति ने पूछा कि आप शंकराचार्य को इतना क्रिटिसाइज क्यों करते हो, तो प्रभुपाद जी ने कहा देखो, मैं कहीं भी उनको संबोधित किया हो तो उनको श्रीपाद शंकराचार्य करके संबोधित किया है, मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं किया हूँ, उनका फिलॉसफी को मैंने खंडन किया है। हमको शंकराचार्य को आदरणीय है, लेकिन उनका फिलॉसफी जो है स्वीकारनीय नहीं है। शंकराचार्य का जो फिलॉसफी है उसको मायावाद कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति मुझे मायावाद को मायावाद क्यों कहते हैं इसके बारे में कोई बोल सकता है, तो मैं उसको स्पेशल गिफ्ट दूंगा।
क्योंकि उन लोग भगवान के शरीर को माया कहते हैं।
वेरी गुड। क्या करते हैं, दे कॉल ईश्वर इज ए प्रोडक्ट ऑफ माया, यानी जितने भी अवतार है वो कौन है, माया से प्रकट हुए है, ऐसा उनका कहना है, इसलिए उनको मायावाद कहा जाता है। तो मायावाद फिलॉसफी के लाइन में एक बड़े मायावादी हुए, उन्होंने लिखा सारा मायावाद सिद्धांत का सार ये है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये एक सत्य ब्रह्म है, वो क्या हुआ है, वो माया का प्रभाव से विभाजन हुआ है। कैसे विभाजन हुआ है, माया का प्रभाव से विभाजित होकर जीव बन गया है, ये एक प्रकार इस प्रकार हुआ। दूसरा है वो पूर्ण ब्रह्म ही वो इस माया के द्वारा प्रभावित हुआ, जब पूर्ण ब्रह्म माया के द्वारा प्रभावित होकर प्रकट हुआ वो ईश्वर है, और माया के द्वारा ब्रह्म प्रकट होकर विभाजित होकर प्रकट हुआ तो जीव है। अस्तित्व में जीव और ईश्वर ये दोनों माया के द्वारा प्रभावित हुए ब्रह्म है। ठीक है, बहुत मुश्किल है। तो श्रीपाद मध्वाचार्य का कहना है अगर वैसा है तो ब्रह्म माया के द्वारा प्रभावित है, तो भगवान कौन है, ब्रह्म कौन हुआ, माया हुआ, क्योंकि ब्रह्म के ब्रह्म से बढ़कर शक्तिशाली है माया। तब श्रीपाद शंकराचार्य ये माया शब्द का इतना वो ये वो करते हैं, एक्सक्लूसिव व्याख्या करते हैं, अंत में साबित करते हैं माया करके भी कुछ नहीं है। अगर ऐसा है तो प्रभाव कौन किया, किसके प्रेरणा से हुआ, क्यों हुआ, तो इतना आर्ग्यूमेंट्स है। खास करके ये शंकर फिलॉसफी को वो बहुत उसके ऊपर विचार करने वाले दो महान आचार्य, श्रीपाद मध्वाचार्य और श्रीपाद रामानाचार्य। ठीक है, तो इस प्रकार हुआ, लेकिन उनका मेन कार्य क्या था, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ योर अपीयरेंस, अपीयरेंस क्या है कि ये जो बौद्ध है, बौद्ध का प्रभाव बहुत ज्यादा है, पूरा भारत बुद्ध से भरे हुए थे, उन सबको भगाना था और सनातन धर्म की। तो इधर एक चीज है फिलॉसफी ऑफ आवर हिस्ट्री और हिस्ट्री ऑफ आवर फिलॉसफी। हिस्ट्री ऑफ आवर फिलॉसफी, हमारा जो दर्शन का इतिहास जानना चाहिए। बौद्ध प्रकट होने के पहले, भगवान बुद्ध प्रकट होने के पहले क्या हुआ था, क्या था, क्या परिस्थिति था, सब लोग जो हैं वेदों के ऊपर अत्याचार करते थे, वेदों का नाम पे सब गायों को मारना और पशु हत्या करते थे। इससे भगवान का प्राकट्य हुआ किसके लिए हुआ, निंदस यज्ञ में दे रहा श्रीजातम, यज्ञ की विधियों को स्थाप बंद करने के लिए भगवान प्रकट हुए बुद्ध के रूप में। उन्होंने कहा कि नो वेदस, नो सैक्रिफाइस, नो वेदस। तो धर्म क्या है फिर, अहिंसा परमो धर्म। सब लोगों ने वेद त्याग कर दिया, तो अगर वेद नहीं है तो मुक्ति कैसे प्राप्त होगा। वैदिक ग्रंथों को तो नाश किया गया था, वैदिक ग्रंथों को पानी में फेंका गया था, जला दिया गया था। खास करके अशोक राजा ने उनको बुद्ध को धर्म को स्वीकार किया, तो जगन्नाथपुरी मंदिर कम से कम 50 साल जो है बुद्धा शुद्धा मुद्धा के रूप में पूजा किए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को। अभी वो भी एक प्रकार का हेडक्वार्टर है हमारा सनातन धर्म का, उधर भी बहुत सारा अभी भी चलता है। अभी वो लोग बोलते हैं ये शून्य है, देखो दिखता है ना गोल गोल गोल, हमारा एंड गोल है शून्य है, तीन शून्य है। हाँ ऐसा कुछ बहुत सारे अपने अपने मनगढ़ंत चीज बताते हैं। तब भगवान बहुत चिंतित हो गए, तो उन्होंने कहा कि शंकराचार्य को कि एक तो काम करने के लिए मैं गया, मैं तो स्थापना किया अहिंसा परमो धर्म, लेकिन वैदिक जिसको स्थापना करना है। तब क्या हुआ, भगवान शिव जी को कहा आप जाओ, तो शिव जी प्रकट हुए शंकर के रूप में। उन्होंने क्या किया, ये बौद्ध धर्म को उन्होंने खंडन किया और सनातन धर्म की पुनर्स्थापना किया। लेकिन सनातन धर्म की पुनर्स्थापना जब किए, फिलॉसफी जो बताए, तो उन्होंने डायरेक्टली नहीं कहा नास्तिक को जाके करोगे, को बोलोगे आप जाओ कृष्ण का सेवा करो, कृष्ण जो है बांसुरी बजा रहे हैं, इनका जो कोमलांगम है उनका नीला रंग का है, तो नास्तिक को कहो दे तो मानेगा थोड़ी ना। नास्तिक को क्या कहा उन्होंने, देखो भगवान है लेकिन वो भगवान जो तुम सोच रहे हो ना शून्य, वैसे ही है, दोनों में अंतर ज्यादा नहीं है लेकिन है। शून्य मत बोलो, ब्रह्म बोलो, निर्वाण मत बोलो, मुक्ति बोलो। खाली शब्दों को उन्होंने चेंज किया, 7 शब्द है बौद्ध धर्म में, वही चीज को खाली शब्द परिवर्तन किया,
शास्त्र पे श्रद्धा रखा।
हाँ एक ही जैसे एक वस्तु है, सपोज एग्जांपल एक करताल, ठीक है है करताल, लेकिन मैंने बोला तुम इसको बॉल समझ लो, कोई बॉल समझ लो, देखो ये बॉल जैसा ही है लेकिन बॉल मत बोलो, इसको करताल बोलो लेकिन असल में करताल का नाम और वस्तु के साथ हमारा आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। क्या किया, लोग उसको गलत समझने लगे और सही नाम देख के गलत वस्तु के पड़ दिया। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु सारमठाचार्य के साथ संवाद में कहते हैं तुमसे श्रेष्ठ बौद्ध लोग है, क्यों भाई, कम से कम शास्त्रों को नकारते हैं आप, शास्त्रों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। सो बोथ दिस आर बेटर देन यू। अगर कोई मायावाद भाष्य को पढ़ना है सीखना है तो आपको क्या करना है, आपको श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती का संवाद, श्री चैतन्य महाप्रभु सारमठाचार्य का संवाद को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। ये जितने भी शंकराचार्य का फोटो दिखाई पड़ रहा है ना, उनसे अच्छा उनका फिलॉसफी जानते हो। वैष्णव फिलॉसफी को तो छोड़ो, शंकराचार्य क्या कहना चाहते हैं वो जानना है तो आपको चैतन्य चरितामृत में ये 2 संवाद पढ़ लेना। तो आज का जो शंकराचार्य है उससे अच्छा आप जान लोगे, एक लिख के देता हूँ गारंटी। अभी का शंकराचार्य इतना बड़ा विद्वान माने जाते हैं, सारा वेद जानते हैं, आप उनको खंडन की बात छोड़ो, खंडन तो कर ही पाओगे, उनका ही फिलॉसफी का अंडरस्टैंडिंग आपको ज्यादा है। तो प्रभुपाद जी ने कहा इफ यू वांट टू लर्न माय वर्ड कम टू मी आई टीच माय वर्ड। कोई भी फिलॉसफी अगर जानना है वो सब श्री प्रभुपाद के बुक्स के अंदर हम जान सकते, इतना अच्छा जान सकते हो कि उनका जो स्कूल में जाने वाला है उससे अच्छा जान लोगे। गायत्री मंत्र क्या है, एक बार मैंने लेक्चर दिया था, वो गायत्री परिवार का प्रमुख ने कहा कि मैं वो 80 साल का हर्षगोविंद प्रभु का वो है 80 साल का व्यक्ति, अभी तो विषय त्याग कर दिया लगता है, तूने कहा कि मैं पिछले 65-70 साल से मैं कर रहा हूँ गायत्री का उपासना, लेकिन ये मुझसे ज्यादा जानते हैं, गायत्री परिवार का है। तो वी नो बेटर अबाउट इट। तो इसलिए अगर आपको किसी को जानना है तो ने क्या किया, मायावादम असत शास्त्रम, असत शास्त्रम फॉल्स स्क्रिप्चर्स के ऊपर आधारित फिलॉसफी, बौद्धम प्रचन्नम उच्चते, ये बौद्ध है, बौद्ध धर्म को उन्होंने क्या, बुद्धिस्ट फिलॉसफी को प्रचन्नम उन्होंने कवर कर दिया, उसको प्रचन्नम का कर चन्नम कवर्ड, कवर्ड बुद्धिज्म, अंदर बुद्धिज्म है मायावाद का, ये फिलॉसफी में क्या है, अंदर बुद्धिज्म है, बाहर एक कोटिंग है सनातन धर्म का वैदिक का। तो ये श्रीपाद, तो श्रीपाद शंकराचार्य का प्राकट्य हुआ सनातन धर्म को रक्षा करने के लिए, लेकिन गड़बड़ हो गया, क्या गड़बड़ हुआ, गलत शास्त्र ने, तो उसके पीछे और एक इंटरनल रीजन है क्यों ये मायावाद भाष्य का प्रस्तुत किया गया है। आपको याद होगा तो मैंने एक बार उदाहरण दिया था, एक बहुत सुंदर आपने स्ट्रक्चर बनाया, बहुत सुंदर आपने आर्किटेक्चरल चीज बनाया, आर्किटेक्चरल बिल्डिंग बनाया, तो बॉम्बे में बनाओगे तो क्या आता है, कबूतर आके उधर खाना बन जाता है कि नहीं, छोटा छोटा छेद है, तो उसको बचाना है कबूतर से, तो क्या करना होगा, एक बम्बू का चबूतरा खड़ा करना है बाजू में, तो कबूतरों को कौन सा अच्छा लगता है रहने के लिए, सब जाएंगे उधर, उधर सब
मिलते हैं,
तुम्हारा जो सुंदर बिल्डिंग है वो बच जाएगा। वैसे ही शुद्ध वैष्णव सिद्धांत को बचाना है, आपको ऐसा एक मायावाद सिद्धांत, नकली सिद्धांत को पेश करना है, बहुत कन्वीनियंट है, अगर आपको बोलेंगे आप ही भगवान हो, इससे बड़ा गुणगान तुम्हारे लिए कुछ हो सकता है,
मैं भगवान करके कृपा से पूरा स्वीकार करेगा,
स्वीकार करेगा,
उनके नेचर
है ना, आप ही भगवान, खाली भूल गया बस, यू फॉरगॉट योर गॉड, और जिस दिन तुम याद करोगे तुम भगवान हो, उस दिन तुमको ज्ञान हो जाएगा। ये सार रूप में उनका फिलॉसफी, और सबको अच्छा लगता है, एवरीबॉडी वांट्स टू बिकम गॉड, और उसको और प्रभुपाद जी ने प्रेरित किया था, मायावादीज विल शेक हैंड्स विद द पॉलिटिशियंस एंड देन डिस्ट्रॉय दिस कंट्री। ये तो, लेकिन अभी का जो कांची का शंकराचार्य है, ही इज ए वेरी लिबरल पर्सन, क्रिस्टकॉन को बहुत मानते हैं, और सबसे पहला भगवद गीता का भाष्य प्रभुपाद का भाष्य पढ़े हुए, ही रोट दिस व्हेन ही वाज इन गुरुकुल, इधर बहुत तकलीफ है उनको, दे आर नॉट रेडी हैं फर्दर सन्यासी, ऐसी स्थिति है, हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन गीता, दे आर इनटू पॉलिटिक्स, उधर जाके ओपनिंग करो, इधर जाके ओपनिंग करो, इसको मिलो उसको मिलो, कहाँ बैठ के कहाँ पढ़ा कर पढ़ा कर। सो वन गुड थिंग इज द मदर सन्यासी इज दे हैव गुरुकुल, दे स्पेंड देयर टाइम विद द टीचिंग, यार वो भी नहीं है, सब खत्म, गवर्नमेंट कैसा जैसे खोल के गुरुकुल ये सब खोले, जाके कुछ अर्चक के कुछ मंत्र सीखेंगे जाएंगे, कुछ पुजारी बनेंगे बस, सिद्धांत का ये शंकर सिद्धांत हो, गलत भले ही गलत हो उसका भी कोई चर्चा नहीं, इट्स नॉट हैपनिंग। देखिए गोड ऑन वो बाजू देखोगे विल बी शॉक्ड, कितना सुंदर बनाया, रोड रोड के साथ बड़ा बड़ा बिल्डिंग, वो ये आश्रम आश्रम एकदम पॉश नहीं है, बहुत पैसा है, इतना धन, पूरा इंडिया का हेडक्वार्टर है ना, पूरा पूरा विश वीएचपी तो कुछ भी नहीं इसके सामने, वीएचपी इसके बजे खड़ा है, जगन्नाथपुरी पूछो ही मत, शंकराचार्य का कर्तव्य है, ही हैज टू कम एवरी डे एंड गिव क्लास देयर, जब वो जगन्नाथपुरी में निवास करते हैं, किसी को मालूम ही नहीं उधर, मुक्ति मंडप में बैठ के क्लास देने का अधिकार केवल शंकराचार्य का, और किसी को नहीं, डिजन गिव क्लास नहीं। द्वारका के महाराज तो कृष्ण का विग्रह है, उसको मसाज करने में मस्त रहते हैं और सब गुजराती भाइयों से धन एकत्रित करते हैं और बहुत सारे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, थोड़ा सा कीर्तन करते हैं, थोड़ा भागवत करते हैं, अच्छे वेट इट इज द्वारका का सी एस्टैब्लिश द्वारका पीठम पूरी पीठम और उधर बद्रीनाथ उधर दक्षिण भारत में श्रृंगेरी 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 पीठम ये चार जगह को चार लोगों को स्थापना किया और चार लोगों को दिया। शंकराचार्य लेफ्ट इज बॉडी डेज 32 आठ साल की उम्र में संन्यास किया शंकराचार्य आठ साल की उम्र में संन्यास लिया। आठ साल से 32 साल यानी कितना हो गया 24 साल भ्रमण करके तीन बार पूरा भारत का भ्रमण किए तीन बार भ्रमण कर एक बार श्रीपाद शंकराचार्य श्रृंगेरी आ रहे थे आकाश मार्ग से उड़ते हुए आ रहे थे कन्याकुमारी से कन्याकुमारी तपस्या किया उधर से वो उड़ते हुए आ रहे थे तो बीच में गुरुवायूर पड़ता है जानते हम लोग थोड़ा और दक्षिण की ओर जाएंगे गुरुवायूर है जिस विग्रह को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पूजा किया था कृष्णा बुक में है ना भगवान पूजा करते थे किसका पूजा करते थे उनका ही पूजा करते थे
अपना ही ध्यान
लगाते थे और उनका एक विग्रह का भी पूजा करते थे यूज्ड टू वर्शिप दैट डेटी इज इन रुक्मिणी के दास विग्रह कहाँ है तो उड़ते हुए आ रहे थे जैसे गुरुवार के ऊपर से आ रहे थे धाड़ करके नीचे गिर गए उनकी सारे जो तपस शक्ति योग शक्ति सब अरे वो छेद जहाँ शंकराचार्य नीचे गिरे धाड़ करके भगवान के सामने गिरे भगवान को दर्शन करते हुए उन्होंने एक एक सुंदर सा गीत गाया जिसको अच्युताष्टकम कहा जाता है अच्युतम केशवम हरिनारायणम हाँ ये फोटोग्राफ जो है ना दिख रहा है कुछ स्टोरी सही है कुछ स्टोरी गलत भी है कुछ स्टोरी कॉन्कॉक्टेड है ठीक है क्योंकि मैंने कहा कि 150 कुछ लोग बोलते 108 ऐसा बोल दिया लेकिन ऑलमोस्ट 108 स्टोरीज आर देयर लेकिन आदिशंकर का है कौन सा शंकर का है कौन सा स्टोरी कहाँ का है कोई हिसाब नहीं कोई ठीक ठाक नहीं उसका जैसे मध्वाचार्य के बारे में एक ही है मध्व विजय लेकिन शंकर विजया कितने सारे ग्रंथ है शंकर विजय के नाम पे वो भगवान ही जाने सुमध्व विजय एक ही ग्रंथ है मध्वाचार्य के बारे में पता करना है वो ग्रंथ के ऊपर आधारित है ठीक है तो मायावाद का इस प्रकार का तो डिटेल फिलोसॉफिकल डिस्कशन अभी कभी और करेंगे
ओम शांति वाले लोग उन लोग उसी को फॉलो करते हैं
क्या ओहो हो
शास्त्र वास्त्र बेकार है
कम से कम
पेपर आया था भीष्म का मेलिंग कर देना तो किसी ओम शांति ओम वाले के पास गया होगा फिर उसने भी एक भेजा वो हमारा निकाल के उसने ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय तो मैं लेके जा रहा था मैं वो बोल क्या है बोला कुछ ब्रह्म कुमारी मैं बोला प्रो जी क्या है पूछना मत इसके बारे में कभी ब्रह्म कुमारी होते हैं क्या ऐसा बेशिया है ब्रह्मचारी होते हैं ब्रह्म कुमारी नहीं होते ऐसा बेशिया होकर रख के नाटक करते
हैं ये किसको किसको आधार रखे इन लोग का सिद्धांत
कोई आधार नहीं मेंटल स्पेकुलेशन
जी शंकराचार्य ने अपने माता जी की विष्णु का दर्शन किया
था शिवा शंकराचार्य
महाविष्णु कह दे रहे ना
कुछ स्टोरीज बता दूंगा ठीक है महाविष्णु शिवा शंकराचार्य का खबर माँ बहुत बीमार है और अभी मृत्यु के समय में है वैसे सन्यासी को कोई कर्मकांड के कार्य नहीं करना चाहिए जैसे भगवद गीता में है ना निराग्य नचाक्रियः उनको अग्नि के साथ कुछ देना देना नहीं अग्नि किसके लिए है एक पकाने के लिए है दूसरा है जलाने के लिए नहीं अग्नि हवन हवन करने के लिए हाँ ये दो कार्य के लिए है तो आखिरी में क्या है दहन संस्कार अग्नि का तो सन्यास जी को इसमें भाग नहीं लेना है उन्होंने क्या किया अंतिम संस्कार किया तो नंबूदरी ब्राह्मण लोग बहुत विरोध किए शंकराचार्य माना ने डिड नॉट एक्सेप्ट क्योंकि उनको उनकी माँ को उनको उद्धार करना था तो उन्होंने माँ को अपनी उनकी माँ को उद्धार किया जो व्यक्ति ने जिस माँ ने शिव जी को अपने घर में धारण किया क्या उनकी क्या गति होगी महान गति तो होगी तो ये श्रीपाद शंकराचार्य ने जो कार्य किया है वो भगवान की आज्ञा के अनुसार किया है, तो उसमें कोई आचार्य किसी दोष न है, चैतन्य महाप्रगवाणी है, आचार्य का कोई दोष नहीं है। भले हम सिद्धांत का खंडन करते हैं लेकिन आचार्य का कोई दोष नहीं है। अगर श्रीपाद शंकराचार्य के ग्रंथों का हम लोग लेखन करेंगे, चार पांच ग्रंथ को छोड़ के इतने सारे उनके साहित्य, उनके सारे रचनाएं हैं, सब वैष्णव सिद्धांत है। राधा कृष्ण की लीलाओं के बारे में बहुत सारा सुंदर ग्रंथ लिखा है। देखिए उनका जो भाष्य है मायावाद भाष्य, उसको हम स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट दैट, शारीरिक भाष्य उसको छोड़ के और दो तीन और ग्रंथ को छोड़ के बाकी सब शुद्ध भक्ति को वर्णन करने वाला है। सबसे फेमस है भजगोविंद, अगर विरक्ति को प्राप्त करना है भजगोविंद अच्छा पढ़ लेना, नहीं तो कम से कम मेरा क्लास तो सुन लेना भजगोविंद के ऊपर है, क्लास है भज गोविंद पूरा याद नहीं है।
जब आसुरी ग्रंथ लिखना है तब वही आदि शंकराचार्य के अंदर मणिमान का शक्ति आके,
श्रीपाद शंकराचार्य जो है उसका ट्यून ये जो है शास्त्रीय है, सिंपल ट्यून करताल के साथ कर सकते हैं उसका, उसको गाएंगे। उनका प्रश्न ये है, श्रीपाद मध्वाचार्य शंकराचार्य को दूरथा कहते, क्या कहते दूरथा, दूरथ का अर्थ क्या, रास्कल। यस, और प्रभुपाद जब रास्कल बोलते हैं कहीं और से नहीं बोल रहे,
पश्चिम में चल गए
विनय तो हुए नया चीज नहीं कहते, जो पूर्व ही आचार्य जो पूर्वाचार्य किया है वही कहते हैं। तो प्रश्न पूछा गया था, ऐसा क्यों करते आचार्य ना, क्यों कह रहा आजकल वही कॉल रहा आजकल आचार्य को, उन्होंने कहा कि शिव जी को कोई राजकल नहीं कहा, लेकिन एक मणिमान राक्षस जो है शिव जी के पास हर प्रकार की शक्ति है, तो ये मणिमान राक्षसों को भी शक्ति शुद्धि प्रदान करते हैं। तो ये शिवजी ने क्या किया, ये मणिमान असुर का जो शक्ति है उसके द्वारा उन्होंने ये मायावाद भाष्य रचना की। जैसे भीम अपने शारीरिक बल से मणिमान राक्षस को वध किया, उसी प्रकार श्रीपाद मध्वाचार्य बुद्धि के बल से मणिमान राक्षस का सिद्धांत को उन्होंने खंडन किया। That is the difference. हाँ, वो दो दो बार आया था, एक बार तो ऐसे आया था फिजिकल फॉर्म में, दूसरा आया था सिद्धांत के रूप में।
तो वही आदि शंकराचार्य के अंदर ही वो कभी वो नहीं प्रकट होता था, कभी दैवी लक्षण ऐसा।
हाँ,
तब वो भज गोविंद
भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते प्राप्ते सन्निहिते काले निहिरक्षसि दुःखं करणे हो गया। मौनी बाबा है
तो
ताला लगाएं, चलिए वैसे का टाइम हो गया, बाद में विल डिस्कस समथिंग। जब 3 बजे तुमको स्पेंड करना है, अब कितना और टाइम, 1 बज गया, 1:30 बज गया, 2 बजे बंद हो जाए प्रसाद, हम जल्दी जाके प्रसाद लेंगे, प्रसाद लेके 1 घंटा बैठेंगे इधर, और प्रसाद इस प्रसाद धाम
अन्न ब्रह्म,
हाँ
अन्न ब्रह्म,
एवरीथिंग इज ब्रह्मन, ब्रह्म प्रसाद, नहीं डोंट वरी, देयर इज नो कंसीडरेशन इन द धाम, इन द होली प्लेसेस देयर इज नो कंसीडरेशन। चलो ये